कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय हो जय हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जय हो जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस अभिचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय श्री श्री यशोदा दामोदर की जय
समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय, श्री श्री दीपदान महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज हमारे प्रवचन का विषय जो है वो मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है, आप लोगों की ओर से क्या कुछ जानकारी है कि आज के प्रवचन का क्या विषय है, मैं जानना चाहता हूँ। किसी को पता है आज के प्रवचन का विषय? कितने लोग हर सोमवार को आते हैं? 1, 2, 3, 4। तो जो हर सोमवार को आते हैं तो आप लोगों को पता है कि क्या विषय चल रहा है, किस तरह से है? नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति में कहाँ तक हुआ है, आज कौन सा है होना चाहिए, है जी? कितना? तीन हो गया नवधा भक्ति में, तीन भक्ति हो गई। तीन भक्ति मतलब कौन सी? पहली कौन सी भक्ति है? श्रवणम। दूसरी भक्ति? कीर्तनम। तीसरी भक्ति? अर्चनम, स्मरण। तीसरी भक्ति स्मरण, उसके आगे नौ प्रकार की भक्तियों में से तीन भक्ति तो किसी प्रकार से हो गई। चौथी भक्ति है अर्चनम। चौथी अर्चनम, तो अर्चना नहीं हुई, नहीं हुई, हो गई, चौथी हो गई। और पांचवी भक्ति क्या है, है? पांचवी भक्ति वंदनम, है? वंदनम हो गई, नहीं हुई। तो आज क्या है, आज फिर क्या होना चाहिए, है? वंदनम। तो जब मैं पूछ रहा हूं तो कोई बता नहीं रहा है, है? देखिए, नौ प्रकार की जो भक्ति है उसका एक श्लोक है, किसी को याद है वो श्लोक जो नौ प्रकार की भक्ति का जिसमें वर्णन आता है? हाँ बताओ, जो बोलो नौ श्लोक। श्लोक श्रीमद् भागवत का श्लोक, बैठ जाओ, श्रीमद् भागवत का श्लोक। नहीं, किसी को नहीं पता? ये श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पता होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बोलिए। स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। नौ प्रकार की भक्ति है, बोलिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नोट करना चाहिए आपको, नोट करके अपने जेब में रखना चाहिए कागज, है? इसको जो है नौ प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति का श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम, तो पहली श्रवण, दूसरी कीर्तन, फिर विष्णु। स्मरणम पाद सेवनम, तीसरी स्मरणम, चौथी पाद सेवनम, और पांचवी अर्चनम। अच्छा हाँ, पाद सेवनम तो बताए नहीं, है ना? तो चौथी पाद सेवनम और पांचवी अर्चनम और छठवीं वंदनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सातवीं दास्यम और सख्यम आत्मनिवेदनम, आठवीं सख्यम और नवीं आत्मनिवेदनम। तो आज कितने नंबर की भक्ति हमें करनी है, है? तीन नंबर, छह नंबर, छह नंबर की भक्ति करना है हमको। आज की जो भक्ति है ये छह नंबर की है, जिस पर हमें चर्चा करनी है, हैं? बंदनम ना। तो देखिए हमारा जो है वंदना का जो नियम है, ये सवेरे जो कार्यक्रम होता है, सबसे पहला कार्यक्रम हमारा होता है मंगल आरती का, तो उसी से शुरू होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदना है ना। तो सबसे पहला जो हमारे दिन का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, वो कहां से प्रारंभ होता है, वंदना से, वंदना भक्ति है। तो इसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के लिखे हुए 8 श्लोक हैं, हैं? तो प्रत्येक श्लोक के अंत में क्या आता है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे यानी मैं वंदना करता हूं। तो ये जो वंदना है ये बहुत आवश्यक है हमें समझना। वंदना का मतलब ये होता है कि हम जो है छोटे हैं और भगवान बड़े हैं, हमें भगवान को नमस्कार करना है। वंदना का मतलब होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, स्तुति करना, नमस्कार करना, याचना करना, वंदना के जो है ये अर्थ होते हैं। तो हमारा जो दिन है, दिन का प्रारंभ जो होता है वो वंदना से ही होता है ना। तो हम लोग जो है जितना भी मतलब प्रार्थना करते हैं, उस प्रत्येक प्रार्थना में क्या है, वंदना का भाव है। मैं तो वंदे है ना, वंदे शब्द आता है कि मैं वंदना करता हूं, या फिर नमो नमः ये शब्द आता है, नमः नमः, नमस्ते, नमामि, ये जो शब्द आते हैं ये भी वंदना के ही भाव में होते हैं, है ना। तो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो प्रत्येक श्लोक के अंत में वंदे गुरु श्री चरणारविंदम आता है कि ऐसे गुरु के चरण कमलों के मैं वंदना करता हूं, है ना। तो इनका जो है हमें अध्ययन करना चाहिए, इन श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए कि हम ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं, हैं? यस्य, जैसे अंतिम है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनकी प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता है, और जिनकी प्रसन्नता ना होने से कोई गति नहीं है, है ना। तो ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, है ना। चौथा श्लोक है, कृत्वैव तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है कि जो चार प्रकार का भगवान का प्रसाद है, स्वादिष्ट प्रसाद है, तो जब भक्त लोग उस स्वादिष्ट प्रसाद को खा करके तृप्त हो जाते हैं, तो जो तृप्ति का अनुभव करते हैं, भक्तों को प्रसाद खिला करके तृप्ति का अनुभव करते हैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, है ना। किस प्रकार से जो है, गुरु के चरण कमलों की वंदना की गई है, जैसे हम लोग ये गाते हैं ना, दामोदराष्टकम, दामोदराष्टकम में भी आता है पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंदे, कि मैं 100 बार प्रेम पूर्वक वंदना करता हूँ, उस ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ, है ना। जैसे उद्धव जी भी जब गोपियों के पास आए ब्रज में, मथुरा से भगवान कृष्ण के भेजे हुए, तो गोपियों के गुणों को देख करके उद्धव जी ने क्या कहा, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम अभिक्षणाशः, कि मैं नंद के ब्रज की स्त्रियों के चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूं। उद्धव जी कहते हैं, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भवन त्रयम, तो जिनके द्वारा हरि कथा का जो उद्गान हुआ है वो तीनों लोगों को पवित्र करता है, तो मैं उन ब्रज स्त्रियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, है ना। उद्धव जी भी कहते हैं वंदे, है ना। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जब महाराज निमि ने प्रश्न किया कि कलयुग में लोग किस प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं, कलयुग में लोग भगवान का पूजन किस प्रकार से करते हैं। तो उत्तर मिला शायद कर भजन ऋषि ने उत्तर दिया, नौ योगेश्वर में से कर भजन है जो भी हो। तुमने उत्तर दिया दो श्लोकों में उत्तर दिया कि इन दो श्लोकों के द्वारा कलयुग में लोग भगवान की वंदना करते हैं। तो दोनों श्लोकों के अंत में क्या आता है, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुष किसको कहा गया है, भगवान को कहा गया है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, हे महापुरुष तुम्हारे चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, है ना। जैसे कि पहला श्लोक है, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, कि आपके जो चरण कमल है ये सदा ध्येयम, ध्येयम माने ध्यान के विषय है, ध्यान है? योगी लोग जो ध्यान करते हैं वो आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। अगर भगवान के चरण कमलों का ध्यान ना करें, है ना, तो ध्यान नहीं कहलाता। आजकल लोग ध्यान सोचते हैं कि शून्य का ध्यान करना है या प्रकाश का ध्यान करना है, तो वास्तव में ध्यान नहीं है। ध्यान करने की विधि क्या है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, परिभवग्न का मतलब है कि संसार के जितने भी क्लेश हैं उनको दूर करने वाले हैं आपके चरण कमल। अभीष्ट दोहम, और जो अभीष्ट है जो हमारी इच्छित कामनाएं हैं उनको प्रदान करते हैं भगवान के चरण कमल। तीर्थास्पदम, समस्त तीर्थों का निवास स्थान भगवान के चरण कमलों में है। शिव विरिंचनोत्तम, और शिव और ब्रह्मा भी जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान के चरण कमल हैं। शरण्यम, शरण्यम का मतलब है भगवान के चरण कमल ऐसे हैं जिनकी शरण लेना आवश्यक है। वृत्यार्थिहम, वृत्यार्थिहम का मतलब है अपने सेवकों के कष्ट को जो दूर करते हैं। प्रणतपाल, प्रणतपाल का मतलब है कि जो उनकी शरण में आ जाते हैं उनका पालन करते हैं, भगवान के चरण कमल ऐसे हैं। भवाब्धिपोतम, भवाब्धिपोतम का मतलब है इस भवसागर में जो जहाज के समान है, भवसागर में जहाज ही से रक्षा होती, नहीं तो भवसागर में कैसे रक्षा होगी, कोई व्यक्ति डूब रहा है तो जहाज ही रक्षा करता है। तो भगवान के चरण कमल क्या है, भवसागर में क्या है, जहाज है। भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, तो हे महापुरुष तुम्हारे ऐसे चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, है ना। इसके बाद दूसरा श्लोक है तो उसमें ये बताया गया है, माया मृगम देतेसितम अन्वधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। माया मृगम तो भगवान राम के लिए भी ये श्लोक हो सकता है और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी हो सकता है। भगवान राम के जो चरण कमल हैं ये माया मृग के पीछे भागे थे। माया का मृग आप लोग जानते हैं, जो सोने का मृग, मरीचि जो है अपनी माया से सोने का मृग बन गया था। तो माया मृगम दयतेप्सितम मनवधावत, उसके पीछे पीछे भागे जो चरण कमल। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। और माया मृगम का दूसरा अर्थ है हम सब लोग माया मृग हैं, और चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को जो है पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, है ना। तो जो जीव हैं जो माया के मृग हैं, माया मृग का एक अर्थ तो यह है कि मरीची जो कि सोने का मृग बन गया था अपनी माया से, और दूसरा माया मृग का मतलब क्या है, माया के पीछे भागने वाले मृग हैं। ये हम सब जीवात्माएं कैसे हैं, माया के पीछे भागने वाले मृग की तरह हैं। माया जैसे मृग होता है ना रेगिस्तान में, तो उसको पानी दिखाई पड़ता है लेकिन पानी नहीं होता वहां, है ना। और वो पानी जितना दूर जाता है उतना दूर उसको पानी दिखाई पड़ता कि पानी है, और इस प्रकार से वो दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता। तो माया मृग, हम लोग भी इसी प्रकार से माया के मृग हैं कि माया हमको सुख दिखाती है कि तुमको सुख मिलेगा, तुमको सुख मिलेगा, इधर आओ मेरे पास है। अजीब जो है माया के पास जाता है, और वो जो है माया सुख नहीं देती है लेकिन सुख दिखाती है, और इस प्रकार से जीव जो है कष्ट पर कष्ट ही भोगा जाता है। तो हम सब जो जीव हैं इस भौतिक संसार में कैसे हैं, माया मृग हैं, माया के पीछे हम भाग रहे हैं। और माया मृगम अनवधावत, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया क्यों, ऐसे जीवों को पकड़ने के लिए हैं, अपने पास बुलाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने संन्यास लिया, उन्हें संन्यास लेने की क्या आवश्यकता थी हैं? उनकी जो माता सची देवी थी हैं? इतना उनको स्नेह मिल रहा था अपनी माता का, और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया है ना, साक्षात लक्ष्मी, तो इतना प्रेम मिल रहा था उनको, तो अपनी माता और पत्नी को त्याग करके उन्होंने क्यों संन्यास लिया, हम सब जीवों को पकड़ने के लिए जो माया के पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, तो हे महापुरुष आपके ऐसे चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं जो माया मृग के पीछे भागते हैं, चैतन्य महाप्रभु, है ना। किस तरह से जो है ये वंदना है, श्रीमद् भागवत में वंदना के श्लोक आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने हैं। किसी को पता है कि श्रीमद् भागवत में कितने वंदना के श्लोक हैं? वंदना यानी प्रार्थना स्तुति, जगह जगह श्रीमद् भागवत में स्तुति प्रार्थना वंदना मिलती है। जैसे श्रीमद् भागवत पहले स्कंध में कुंती महारानी की प्रार्थना है ना, तो बहुत लंबी प्रार्थना है। जब भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे हैं तो भगवान कृष्ण की वे भी स्तुति करते हैं, भीष्मदेव ने स्तुति की शरीर छोड़ने से पहले, है ना। वैसे महाराज ने भी जो है प्रार्थना की है, ऋषि मुनियों से प्रार्थना की, है ना, कि हमें आप भगवान का चरित्र सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी ने भी बहुत लंबी भगवान की स्तुति की, जिस समय श्रीमद् भागवत का वो प्रवचन देने वाले थे, स्तुति की। तो इस तरह से जगह जगह देवता लोग भगवान से स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थनाएं जो है श्रीमद् भागवत में इतनी है कि श्रीमद् भागवत प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। और कितने श्लोक है श्रीमद् भागवत में प्रार्थना के, एक तिहाई, आप समझ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में तो मतलब वैसे तो कथाएं हैं, चरित्र हैं भगवान के और भगवान के भक्तों के, लेकिन उसमें जो है प्रार्थना वंदना का इतना महत्व है कि एक तिहाई श्लोक कितने हैं श्रीमद् भागवत के, एक तिहाई श्लोक है। मतलब श्रीमद् भागवत में कुल मिला के कितने हैं श्लोक हैं, कौन बताएगा? 18,000 श्लोक हैं, और एक तिहाई श्लोक प्रार्थना के वंदना के हैं, तो कितने श्लोक हुए? 6,000 श्लोक, है ना। तो वंदना मतलब कितनी महत्वपूर्ण है ये हमें मतलब समझना है ना। देखिए वंदना जो है हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इसके बिना काम नहीं चलता, इसके बिना काम नहीं चलता, है ना। मंदिर में भी जब आते हैं अगर आप झुकते नहीं है, वंदना का मतलब नमस्कार करना, झुकना, प्रणाम करना, जैसे जयकारा, जब जयकारा हम लोग बोलते हैं, आज अभी मैंने जयकारा बोला था ना, है ना, जय ओम विष्णुपाद, है ना। तो ये बहुत जरूरी है सीखना कि कुछ लोग तो आप कुर्सी में बैठे तो ठीक है, माथे को जमीन में नहीं लगा सकते। जयकारा के समय विधि होती है कि माथे को जमीन में लगाएं, तो आप कुर्सी में बैठे हैं तो माथे को जमीन में नहीं लगाया, लेकिन तो भी हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, तो कुछ लोगों ने हाथ जोड़ा सिर झुकाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे, कुछ लोग ऐसे बैठे ना, इसका मतलब सीखे नहीं। आप लोगों को सीखना चाहिए क्योंकि वंदना जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है उसमें बताया गया है वंदना का कितना महत्व है। जो श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है यानी 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक जहां श्रीमद् भागवत समाप्त होती है, वहां पर यह बताया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, कि प्रणामो दुख समनस, कि प्रणाम करने से दुख का समन हो जाता है। हम जैसे ही प्रणाम करते हैं भगवान को, कृष्ण को, तो हमारे दुखों का समन हो जाता है, है ना। तो ये बहुत जरूरी है सीखना। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को भी जो है माता पिता सिखाते हैं, हालांकि बच्चे कुछ नहीं जानते, बोलना भी नहीं जानते हैं, है ना। तो मन से और वाणी से तो वे वंदना नहीं करते हैं, लेकिन शरीर से फिर भी उनको क्या करते हैं, माता पिता लेटाते हैं बच्चे को। तो बच्चा नहीं जानता कि मैं क्यों लेटा हूँ, फिर माता पिता लेटाते हैं, है ना। प्रभुपाद के सामने जमीन में लेटा देते हैं, राधा पार सारथी के सामने जमीन में लेटा देते हैं, है ना। तो वंदना भी जो है तीन प्रकार से होती है, है? एक श्लोक है श्रीमद भागवत का जिसमें बताया गया है, तत्तेनुकंपाम समीक्ष मानो भुंजानमेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपु फिर विधन नमस्ते जीवित यो मुक्ति प्रदेश दाय भाग। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवित रहता है, कैसे जीवित रहता है, तो तेनुकंपाम सुस्मिक्ष मानो आपकी कृपा हमेशा देखता है, हर चीज में आपकी कृपा देखता है, है? और भुंजानमेवात्म कृतम विपाकम, और जहां आपकी कृपा ना दिखाई दे कि मुझे तो दुख मिल रहा है, यहां तो भगवान की कृपा नहीं है, तो उसमें अपना किए हुए कर्म का वो देख रहा है, दोष मेरा है कि मेरे कर्म के दोष से मुझे मिल रहा है, है ना। तो भगवान की तो कृपा ही देखना, और जहां भगवान की कृपा ना दिखाई दे तो भगवान का दोष नहीं देखना कि भगवान का दोष है, अपना दोष अपने कर्म का दोष है जो मैं भोग रहा हूं। भुंजानमेवात्म कृतम विपाकम हृद वाग वपु फिर विदधन नमस्ते। हृद वाग वपु फिर, हृद का मतलब मन से वाणी से और शरीर से, मन से वाणी से शरीर से जो आपको नमस्कार करता है, जीवित यो मुक्ति प्रदेश दाय भाग। तो जो इसी प्रकार से जीवित रहे, जीवन भर यही करे तो मुक्ति प्रदेश दाय, तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो जो है वैसी अधिकारी हो जाता है जैसे पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। पुत्र जो है अगर पिता की आज्ञा के अनुसार चलता रहे और केवल जीवित रहे तो पुत्र को जो है पिता की संपत्ति का अधिकार अपने आप मिल जाता है, बिना कुछ किए, बिना कुछ प्रयास किए, केवल उसको जीवित रहना है, जीवित रहना और पिता की आज्ञा के अनुसार चलना है, तो पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। तो उसी प्रकार से जीव जो है अगर हृद वाग वपु फिर, यानी मन से और वाणी से और शरीर से नमस्कार करे, हाँ, और इसी प्रकार से अगर जीवित रहे तो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। मुक्ति पद का मतलब है कि हम इस भौतिक संसार की जेल के अंदर बंद हैं, हाँ, तो हम इस जेल से छूट जाएंगे बहुत आसानी से। वास्तव में ये भौतिक संसार जो जेल है, इस जेल में हम आए क्यों, क्योंकि हम जैसे ही हमारे अंदर विचार आता है कि मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, तो हम आ जाते हैं इस भौतिक संसार में, मतलब इस जेल में आ जाते हैं, है ना। लेकिन जब हमारी चेतना स्वच्छ हो जाती है तो फिर हम अपने को दास समझते हैं, और भगवान जो है हमारे स्वामी हैं, और हम उनकी जो है हम उनके सेवक हैं, हम उनको नमस्कार करें तो जेल से बाहर निकल जाएंगे। तो बस जरा सी तो बात है समझने की कि हम झुकना नहीं चाहते हैं भगवान के आगे तो जेल में आ जाते हैं, और जब हम भगवान के आगे हम झुकना सीख जाते हैं तो जेल से बाहर निकल जाते हैं। तो झुकना ही है, इसी कहते हैं, इसी को कहते हैं वंदना, है ना। तो यहां तक कि हरे कृष्ण मंत्र भी जो है, वैसे तो हम कहते हैं भाई श्रवण, हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, तो ये श्रवण कीर्तन के अंदर आता है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं या कीर्तन करते हैं तो ये तो श्रवण कीर्तन के अंदर आता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये वंदना भी है। आप सुन रहे हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करना भी एक वंदना है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि इसमें हमारा भाव क्या होता है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो वंदना का मतलब क्या है, याचना, हम अगर कुछ मांगते हैं तो वही वंदना कहलाती है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना भी अपने आप में एक वंदना है कि हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो इस तरह से जो है हमें समझना है। अब देखिए रोज की जो प्रार्थनाएं और मंत्र हम लोग पढ़ते हैं तो उनमें कैसे ये शब्द आते हैं वंदना के, वो मैं आज देख रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गुरु प्रणाम का जो मंत्र है उसमें उसके शब्द हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ पर क्या शब्द आया, नमः। नमः का मतलब वंदना, ये वंदना का भाव है कि मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे, गुरु को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मेरी आंखों को खोला, और मेरी जो आंखें हैं अज्ञान के अंधकार से बंद हो गई हैं, तो उन्होंने जो है मुझे ज्ञान के अंजन रूपी सलाका से मेरी आंखों को खोला, तो ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो देखिए वंदना का इसमें भाव है। इसके बाद जब हम लोग प्रवचन देते हैं तो अक्सर ये प्रार्थना गाते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांशा। तो इसमें भी शब्द, सबसे पहले शब्द क्या आता है, वंदे। वंदे अहम, अहम का मतलब मैं, तो मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करता हूँ, श्री गुरु श्री युत पद कमलम, श्री गुरु के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ, श्री गुरुन वैष्णवांचा, फिर श्री गुरुओं की वंदना करता हूँ और वैष्णवों की वंदना करता हूँ। श्री रूपम, श्री रूप गोस्वामी की वंदना करता हूँ, साग्र जातम और उनके बड़े भाई के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनके बड़े भाई कौन है, रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी, सागण रघुनाथान्वितम और रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ, सजीवम जीव गोस्वामी के साथ, साद्वैतम और अद्वैत आचार्य के साथ, सावधूतम अवधूत के सहित यानी नित्यानंद प्रभु के सहित, परिजन सहितम और जितने भी उनके परिजन हैं, श्री कृष्ण चैतन्य देवम, श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, राधा कृष्ण पादान राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांशा और उनके साथ में ललिता देवी की वंदना करता हूँ, विशाखा देवी की वंदना करता हूँ। देखिए कितनी मतलब वंदना है, कितनी वंदना है। फिर प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है इसमें भी क्या है, सबसे पहला शब्द क्या है, कौन बताएगा, नमः। तो नमः का मतलब वंदना का भाव है, नमस्कार करता हूँ। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, जो विष्णु के चरण कमलों में जिनका निवास स्थान है, कृष्ण के पृथ्वी में सबसे अधिक प्यारे हैं, श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम ने, तो भक्ति वेदांत स्वामी जिनका नाम है उनकी मैं वंदना करता हूँ। फिर दूसरा जो श्लोक है प्रभुपाद के प्रणाम का, उसमें पहला शब्द क्या है, कौन बताएगा, नमस्ते। नमः ते, ते माने आपको और नमः माने नमस्कार है, यह भी वंदना का भाव है ना। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे, तो जिन्होंने पश्चिमी देशों का उद्धार किया, निर्विशेषवाद और शून्यवाद जहाँ फैल गया था, तो ऐसे प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ। फिर उनके जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके भी जो प्रणाम मंत्र है इसमें कितने बार शब्द आता है, नमः। देखिए सबसे पहले शब्द आता है नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कि मैं नमस्कार करता हूँ जो पृथ्वी में कृष्ण के प्रिय हैं, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने, जिनका नाम श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती है। इसके बाद फिर दूसरा जो मंत्र है प्रणाम का, इसमें भी आया है अंत में नमः श्री मार्स भानवी देवी दयिताय कृपाधये, वृष भानु देवी की जो है जो सेवक हैं, कृष्ण संबंध विज्ञान दाई ने प्रभुवे नमः, कृष्ण के संबंध का विज्ञान प्रदान करने वाले हैं उनको नमस्कार है। तो दूसरे प्रणाम मंत्र में नमः शब्द आया है। इसके बाद फिर तीसरा जो प्रणाम मंत्र है उसमें भी आया नमोस्तुते माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति दे, जो माधुर्य है, प्रेम का जो है प्रदान करने वाले हैं, हैं श्री रूप गोस्वामी के अनुगामी है। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह है, जो श्री गौरांग महाप्रभु के करुणा शक्ति की मूर्ति है, हैं उनको नमस्कार है। नमोस्तुते, नमो अस्तुते, आपको नमस्कार होवे। तो यहाँ भी वंदना का भाव है। इसके बाद चौथा श्लोक है, वो शुरू होता है नमस्ते, नमस्ते से शुरू होता है वंदना के भाव से। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीन तारिणी। तो जो गौरवाणी की मूर्ति है, दीनों का उद्धार करने वाले हैं, हैं और विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत, जो रूप गोस्वामी के विरुद्ध सिद्धांत हैं के अंधकार को दूर करने वाले हैं, है ना। तो नमस्कार, तो नमस्कार जो है चार जो मंत्र हैं, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रणाम में चार मंत्र हैं, और प्रत्येक मंत्र में या तो प्रारंभ में या अंत में नमः या नमो ये शब्द आते हैं। तो आप समझ रहे हैं मतलब वंदना कितना मतलब वंदना आवश्यक है। फिर उनके जो गुरु महाराज हैं कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज कौन है, कौन है? आप लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हैं, है ना। आप लोग आते हैं अगर इस कोण से जुड़े हुए हैं तो कम से कम प्रभुपाद के ऊपर हैं जो गुरु परंपरा है, कम से कम चार या पांच नाम तो पता होना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके गुरु गौर केशवदास बाबा जी। तो इनका जो प्रणाम मंत्र है इसमें तो देखिए मंत्र के पहले भी नमो आता है और मंत्र के अंत में भी नमः आता है। नमो से प्रारंभ होता है और नमः से समाप्त होता है। नमो गौर केशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये, मतलब नमस्कार है किनको, गौर किशोर को जो साक्षात वैराग्य की मूर्ति है। विप्रलम्ब रसाम बोधे पादाम बजाए थे नमः, तो जो विप्रलम्ब के रस के समुद्र है हैं ऐसे चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूं, है ना। तो ये सोचिए गौर केशोदास बाबा जी के प्रणाम मंत्र में प्रारंभ में भी नमो और अंत में भी नमः। पर भक्ति विनोद ठाकुर हैं जो उनके गुरु हैं, किनके गुरु हैं, गौर केशोदास बाबा जी के गुरु हैं, उनका प्रणाम मंत्र है उसमें भी हैं शब्द प्रारंभिक शब्द क्या है, नमो, यानी मैं नमस्कार करता हूँ। नमो भक्ति विनोदाय, मैं भक्ति विनोद को नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद नामिने, जिनका नाम सच्चिदानंद है। गौर शक्ति स्वरूप आए रूपानुग बराइते, जो गौर शक्ति के स्वरूप हैं और रूप के अनुगामियों में जो श्रेष्ठ हैं उनको नमस्कार है। हरि बोल। कुछ लोग सो रहे हैं, नींद आ रही है क्या, अच्छी कुर्सी मिल गई है सोने के लिए, कुछ लोगों को नींद आ रही है बहुत, दिन भर के थके हैं तो नींद आ रही है। हाँ अच्छा, तो भक्तिनो ठाकुर के गुरु कौन है, जगन्नाथ दास बाबा जी। तो देखिए इनके प्रणाम मंत्र भी है अंत में क्या आता है, नमः। गौराविर भाव भूमेस्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिया, तो आप जो है जो है गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान का निर्देशन किया, आपने गौरांग महाप्रभु जन्म स्थान का निर्देशन किया है, और वैष्णवों के सार्वभौम वैष्णवों के सम्राट आप हैं, हैं श्री जगन्नाथ आए थे नमः। तो श्री जगन्नाथ आपको नमस्कार है, इसमें भी नमस्कार आया है। फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र, बच्चों को जो है शांत करिए, यहाँ खेलेंगे नहीं, किसके बच्चे हैं दौड़ रहे हैं, संभालिए या तो बाहर ले जाइए बच्चों को। वैष्णव प्रणाम मंत्र आता है सबको, सबको नहीं आता। वांछा कल्प तरोभ्यश्च और वांछा कल्प तरोभ्यश्च कृपा सिंधु विचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये भी वंदना है। तो कितनी वंदना अभी हमने आपको जो है मतलब बताई, जो रोज की होती है। हम लोग जो है मंदिर में जितने भी मतलब करते हैं, हैं बोलते हैं, उसमें कितनी अधिक जो है वंदना के श्लोक है ना। तो ये वैष्णव प्रणाम भी क्या है, वंदना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्चा, जो वांछा को पूर्ण करने वाले, करने में जो कल्प वृक्ष हैं, कृपा सिंधु बेवजा, कृपा के समुद्र हैं, पतिता नाम पावनेभ्यो, पतितों को पवित्र करने वाले, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवों को नमस्कार है। और इसमें एक बार नमो और दूसरी बार नमः, नमो नमः दो बार आया, वैष्णव प्रणाम मंत्र में दो बार आया है, एक बार आया नमो, दूसरी बार आया नमः, मतलब नमस्कार है, नमस्कार है। तो कितना महत्वपूर्ण है नमस्कार करना, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की वंदना में है नमो महावदान्याय और कृष्ण प्रेम प्रदायते, और बहुत कम लोग जानते हैं महाप्रभु की वंदना मालूम होना चाहिए, नमो महावदान्याय मेरे पीछे बोले, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। तेरी वंदना है। इस मंत्र में शुरू में क्या है शब्द, नमो, और अंत में शब्द क्या है, नमः। ये वंदना है ना। तो आज चूंकि वंदना भक्ति की चर्चा कर रहे हैं ना, तो हम मतलब आपको बताना चाहते हैं कि ये तो जो है मतलब इतना अधिक हमारे जीवन में ये पहले से जुड़ा हुआ है, केवल हमें देखना है, केवल समझना है। इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई हमें सोचना पड़ेगा ज्यादा कि भाई ये वंदना क्या होती है, वंदना ही वंदना है ना। इसमें क्या क्या, नमो महावदान्याय, नमस्कार करता हूं किनको, महावदान्याय जो महा उदार हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम जिन्होंने प्रदान किया है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, जो कृष्ण है लेकिन नाम से कृष्ण चैतन्य है, हैं गौरत्व से नमः, और गौर जिनका वर्ण है, जिनके शरीर का रंग गौर है, हैं तो उनको नमस्कार है ना। इसके बाद पंच तत्व प्रणाम, पंच तत्वात्मकम कृष्णम, और जरा जोर से बोलिए, पंच तत्वात्मकम कृष्णम, पता नहीं आवाज नहीं आ रही, कितने लोग बैठे हुए हैं, कोई बोल नहीं, मुंह सब बंद, मुंह जैसे सिला हुआ हो, पता नहीं क्या है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति कम, बोलना चाहिए है ना। ये वंदना वाणी से है, एक तो शरीर से वंदना होती है कि आप झुकते हैं, है ना, शरीर से वंदना है, वाणी से वंदना है बोलना, और फिर मन से वंदना, उसको मन में भी उस प्रकार का भाव पैदा करना है ना। तो सबसे प्रारंभ जो होता है वंदना का, प्रारंभ होता है शरीर से। आप कुछ भी नहीं बोलते हैं तो कम से कम है ना, सिर झुकाओ, हाथ जोड़ो, है या जमीन में भी है, आप है, लेटते हैं या माथा टेकते हैं, तो शरीर से वंदना होती है, है। फिर हम सीखते हैं वाणी के द्वारा, शरीर के साथ साथ फिर वाणी से भी बोलना भी है ना। तो वो शब्द अभ्यास करिए बोलने का, है, तो ये शरीर और वाणी दोनों से फिर वंदना होती है, फिर शरीर वाणी और मन, फिर मन में भी इसी प्रकार का भाव लाना है ना, तब ये वंदना पूरी होती है। जब आप शरीर वाणी और मन तीनों के द्वारा आप जो है वंदना करते हैं, तो फिर ये वंदना आपकी क्या होती है, पूर्ण होती है ना। ये प्रारंभ, प्रारंभ कैसे होता है, शरीर से है ना। फिर वाग वपु फिर विधन नमस्ते, हृदय वाणी और शरीर के क्रम है। हृदय में तो बाद में आएगा, हृदय से पहले वाणी में आएगा और वाणी से पहले शरीर में आएगा। तो शरीर से जो है पहले सीखा जाता है ना। तो सिर झुकाना है, हाथ जोड़ना है कि बंधना है ना। तो देखिए इसमें पंच तत्व प्रणाम का जो मंत्र है इसमें भी शब्द आता है नमामि है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण जो पंच तत्व पंच तत्व का उन्होंने पंच तत्व के रूप में प्रकट हुए हैं। भक्त रूप है स्वरूपकम, पंच तत्व में पहला तत्व है भक्त रूप, दूसरा तत्व है भक्त स्वरूप, तीसरा तत्व है भक्तावतार, चौथा है तत्व भक्ताख्यम और पांचवा तत्व है भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्व के रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं और उनको भी मैं क्या कर रहा हूं नमामि। नमामि का मतलब मैं नमस्कार कर रहा हूं, है ना। अच्छा इसके बाद श्री कृष्ण प्रणाम का मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु और हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तो इसमें अंत में भी क्या है नमोस्तुते, आपको नमस्कार होवे, नमो अस्तुते आपको नमस्कार होवे। तो ये भी क्या है वंदना, तो वंदना होती है। गुरुवर्षिकम में हमने आपको बताया कि प्रत्येक श्लोक के अंत में क्या आता है, क्या पंक्ति आती है प्रत्येक श्लोक के अंत में, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो ये वंदना जो है हमारी दिन का प्रारंभ होता है। इसका नरसिंह प्रणाम, नरसिंह प्रणाम में भी सबसे पहले शब्द क्या आता है नमस्ते, नमस्ते नरसिंहाय, है नमस्ते का मतलब आपको नमस्कार है, नमस्ते नरसिंहाय, है ना। तो इस तरह से ये वंदना कर वंदना की भावना है। इसके बाद तुलसी प्रणाम मंत्र, तुलसी प्रणाम मंत्र में अंत में क्या आता है नमो नमः, है ना। वृंदाय तुलसी देव्याय वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवर्षजा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः, है ना। तो नमो नमः दो बार आया शब्द, नमो फिर नमः, है ना। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, जो कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली देवी है और सत्यवती है उनको नमस्कार है, नमस्कार है नमो नमः, है ना। इसके बाद तुलसी वंदना हम लोग गाते हैं तो शुरू में क्या शब्द है तुलसी वंदना में नमो नमः, क्या शब्द है नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, है ना। नमो नमः, है ना। तो शुरू ही होता है ये प्रार्थना शुरू होती है नमो नमः से, तुलसी कृष्ण प्रेयसी कि आप कृष्ण की प्रेयसी हैं, है ना। और प्रत्येक जो पद जहां समाप्त होता है तो नमो नमः ये फिर उसका वो चलता है, हाँ? इसे क्या बोलते हैं कोरस बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब पद समाप्त होता है तो उसको दोहराया जाता है, है ना। तो उसको कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में कोरस बोलते हैं कि मतलब प्रत्येक पद के अंत में फिर ये पंक्ति फिर आएगी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, है ना। तो ये बार बार आता है, हर बार आता है नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, कितना नमस्कार किया गया है, है ना। हम लोग गुरु वंदना गाते हैं तो इसमें भी शब्द आता है बंदो मोई सावधान मते, श्री गुरु चरण पद्मा केवल केवल भक्ति सदमा बंदो मई सावधान मते, है ना। तो बंदो ये बंगाली है, बंगाली शब्द, बंगाली भाषा में जब बंदो हम बोलते हैं तो इसका मतलब मैं वंदना करता हूं। बंदो एक शब्द से जो है पूरा वाक्य बनता है। बंगाली भाषा में एक शब्द है बंदो, तो इससे हिंदी में पूरा वाक्य बन जाता है मैं वंदना करता हूं, है ना। बंदो मोई सावधान मते, है ना। तो सावधान मति से मैं वंदना करता हूं। किसकी वंदना करता हूं? श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। केवल है भक्ति सदमा, जो केवल भक्ति के आश्रय हैं, है ना। तो इस तरह से वंदना ये मतलब होती है गुरु के चरण कमलों की। इसके बाद दामोदर अष्टकम, ये कार्तिक में ये रोज का नियम है कि हम लोग दामोदर अष्टकम में पाठ करते हैं। और यहाँ अभी तो कई सालों से हमारे मंदिर में दो बार दामोदर अष्टकम का पाठ किया जाता है, है ना। सवेरे मंगल आरती में भी किया जाता है और शाम को भी संध्या आरती के बाद किया जाता है। तो दामोदर अष्टकम में भी सबसे पहला शब्द जो शुरू होता है, शुरू का शब्द क्या है? नमामि, है ना। ये क्या है? ये वंदना है। नमामि है, मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। किसको नमस्कार करता हूँ? ईश्वरम, उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो कैसा है? सच्चिदानंद रूपम, जिसका रूप है, निराकार नहीं है, जिसका रूप है। और रूप की भी विशेषता है सच्चित आनंद रूप है। उसका रूप कैसा है? सत चित और आनंद, तीन प्रकार की विशेषताएं उसके रूप में है, है ना। तो ये जितना जितनी भी प्रार्थना है इसमें प्रत्येक बात में नमामि शब्द आता है, क्योंकि जब नमामि से शुरू हुआ ये दामोदर अष्टकम में, जब नमामि से शुरू हुआ कि मैं नमस्कार करता हूं, तो जहां जहां भी नमामि नहीं है तो आपको नमामि उसमें समझना है कि मैं नमस्कार कर रहा हूं, है ना। रसत कुंडलम, जिनके कुंडल शोभा दे रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। गोकुले ब्राजमानम, जो गोकुल में शोभायमान है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यशोदा भयो उलूखला धावमानम, यशोदा के भय से उलूखल से कूद करके भाग रहे हैं, है ना, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो नमामि शब्द जो है हर जगह आता है, है ना। नमामि ईश्वरम, नमामि सच्चिदानंद रूपम, नमामि लसत कुंडलम, नमामि गोकुले भ्राजमानम, नमामि यशोदा भियोलूखला धावमानम, है ना। फिर रुदंतम, जो रोते हैं, मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम, दोनों नेत्रों को बार बार क्या कर रहे हैं? मींज रहे हैं, रगड़ रहे हैं, है ना, उनको नमस्कार करता हूं। सातंक नेत्रम, जिनके नेत्र आतंक से भरे हैं, भयभीत, जिनके नेत्र भयभीत हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं, है ना। भक्तिबद्धम, नमामि भक्तिबद्धम, जो भक्ति से बधे हुए हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, है ना। इस तरह से तीसरा जो श्लोक है इसमें फिर आता है पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति बंदे, कि पुनः प्रेमतस्तम, फिर से प्रेमतः यानी प्रेम पूर्वक, तम यानी उनको सत आवृत्ति बंदे, 100 बार वंदना करता हूं। अब देखो एक बार हम कहते हैं वंदना करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा 100 बार वंदना करता हूं, इसका मतलब है कि आपको 100 बार आपने बोल दिया क्या? बंदे नमामि, 100 बार आपने बोल दिया सतावृत्ति बंदे। तो ये भी विधि है, आप 100 बार नहीं बोलते हैं लेकिन आपने बोल दिया 100 बार, है ना। इसके बाद छठवां जो श्लोक है इसमें ये प्रारंभ होता है कहां से? नमो, नमो का मतलब मैं नमस्कार करता हूं, है? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, तो मैं नमस्कार करता हूं, हे देव आपको मैं नमस्कार करता हूं, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु आपको नमस्कार करता हूं, है ना, प्रसिद्ध प्रभो मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। जो आठवें श्लोक है इसमें आता है इसमें कई बार आया है नमः, आठवें श्लोक में कई बार नमः आया है। सबसे पहले जो प्रारंभिक शब्द है वो क्या है, नमस्तेस्तु, नमस्तेस्तु, नमः ते अस्तु, आपको नमस्कार होवे, है ना। नमस्तेस्तु दामने इस पर दीप धामने, तो आपकी रस्सी को नमस्कार होवे, जिस रस्सी से आप बंधे हैं उसको नमस्कार होवे। इसके बाद फिर नमो राधिकाए, राधिका को नमस्कार होवे। तदीय प्रियाए, जो आपकी प्रिया है। फिर नमो अनंत लीलाए, अनंत लीला करने वाले को नमस्कार होवे। नमो अनंत लीलाए देवाए तोभ्यम, तो ऐसे देवता जिनकी लीलाएं अनंत हैं, ऐसे आप देवता को नमस्कार होवे। इस प्रकार से हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो वंदना स्तुति है ये जो है मतलब हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक भक्ति के अलग अलग आचार्य भी हैं, नर्मदा भक्ति में ऐसे प्रत्येक भक्ति के अलग अलग आचार्य हैं, है ना, पता है। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है, नहीं पता है। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, मतलब कि इन्होंने केवल एक प्रकार की भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया। तो कोई व्यक्ति नौ प्रकार की भक्तियों में से एक प्रकार की भक्ति के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई दो प्रकार की भक्ति के द्वारा, कोई तीन प्रकार की, और कोई नौ के नौ प्रकार की भक्तियों के द्वारा। लेकिन सिद्धांत क्या है कि 24 घंटे लगे रहना, 24 घंटे आप लगे रहिए, चाहे एक प्रकार की भक्ति में लगे रहिए, चाहे दो प्रकार की, चाहे नौ प्रकार की, लेकिन मुख्य बात क्या है कि 24 घंटे लगे रहिए। तो जो आचार्य हैं नौ प्रकार की भक्तियों के अलग अलग, तो उनमें क्या है कि वो एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने केवल उसी प्रकार की भक्ति का ही आचरण किया 24 घंटे। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है जिन्होंने 24 घंटे श्रवण किया, कौन है, परीक्षित महाराज। अब कीर्तन भक्ति के आचार्य 24 घंटे कीर्तन किया, सुखदेव गोस्वामी है कीर्तन भक्ति के आचार्य। स्मरण भक्ति के आचार्य 24 घंटे स्मरण भक्ति की, प्रहलाद महाराज स्मरण, क्योंकि असुरों के समाज में ना तो किसी से वो उनको सुनने का अवसर मिलता था, कौन सुनाएगा उनको कृष्ण कथा, और ना उनको सुनाने का अवसर मिलता था, कोई सुनने वाला भी नहीं था, है ना। तो श्रवण और कीर्तन का तो मौका था नहीं, तो क्या करते थे, केवल स्मरण। तो आज प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य हैं, एकमात्र स्मरण 24 घंटे करते थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम जिन्होंने 24 घंटे चरणों की सेवा की, ऐसे भक्ति के आचार्य कौन है, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी है, है ना। स्मरणम पाद सेवन अर्चनम, अर्चनम भक्ति के आचार्य है जिन्होंने 24 घंटे अर्चना की, तुम्हारा सो रहे हैं, हरि बोल, कौन सो रहा है यहाँ पर, सो रहे हैं, बैठे हैं, बैठ करके सो रहे हो, सोने के लिए आए हो, तुम्हें क्या बता रहा था, अर्चनम, अर्चनम भक्ति के आचार्य पृथु महाराज। श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन है पृथु महाराज का, अर्चना भक्ति, है ना। तो अश्वमेध यज्ञों के द्वारा जो है उन्होंने भगवान की पूजा की, अर्चना भक्ति, अर्चनम, अर्चनम, इसके बाद वंदनम, वंदनम भक्ति के आचार्य कौन है, वंदनम भक्ति के आचार्य अक्रूर जी, अक्रूर जी वंदनम भक्ति के आचार्य हैं, है ना। तो वंदना बहुत जरूरी है, जिसमें कंस ने उनको मथुरा से वृंदावन भेजा था, किस लिए भेजा था? कृष्ण को लाने के लिए। तो कंस का इरादा क्या था कि कृष्ण बलदेव को मथुरा में लाकर के उनको मरवा डालूं, है ना। अक्रूर जी जो है कंस के भेजे हुए आए, तो वे रास्ते पर प्रार्थना करते रहे, रास्ते पर प्रार्थना करते रहे कृष्ण से कि मैं कंस का भेजा हुआ मथुरा से वृंदावन उसी प्रकार आ रहा हूं जिस प्रकार से पोतना भी आई थी, पोतना भी आई थी, अघासुर आए थे, बकासुर आए थे, सब आए थे, है ना। तो मैं भी उसी प्रकार से आ रहा हूं, लेकिन मेरा इरादा नहीं है ऐसा, मैं कुछ मजबूरी में आ रहा हूं, ये मेरा ऐसा इरादा नहीं है। तो रास्ते पर वो वंदना करते रहे भगवान से, क्या वंदना करते रहे कि जैसे कंस के भेजे हुए मथुरा से पूतना अघासुर बकासुर आए और फिर वापस नहीं गए, उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा, ऐसा मुझे नहीं करना। आप अक्रूर जी जो है प्रार्थना कर रहे थे कि हालांकि हूं तो मैं भी वैसे ही उन्हीं के ही टीम का हूं, मैं भी आदमी, लेकिन मेरा आंतरिक इरादा ऐसा नहीं है, कि मैं आपको मारना चाहता हूं या आपको मरवाना चाहता हूं, मजबूरी में आया हूं, तो मेरे ऊपर आप कृपा करना, मुझे शरीर न छोड़ना पड़े, मेरी रक्षा करना। तो वंदना जो है, अक्रूर जी ऐसी स्थिति में पड़ गए कि उनको वंदना करनी पड़ी, और बड़ी तीव्र वंदना करनी पड़ी, है ना। फिर बाद में भी जो है, जब वृंदावन से मथुरा आ रहे थे तो जमुना जी के अंदर कृष्ण बलदेव का दर्शन किया उन्होंने, तो उन्होंने फिर वंदना की। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का 40वां अध्याय पूरा का पूरा वंदना का है ना। उसमें 30 श्लोक हैं अक्रूर जी के, जिसमें कि वो जो है वंदना करते हैं। तो इस तरह से जो वंदना भक्ति है, ये इस पर हमने आप लोगों के साथ में चर्चा की। अब तो समय हो चुका है, फिर भी आप लोगों की ओर से कोई एक आध प्रश्न अगर हो तो हम लोग कर सकते हैं उसको। कोई प्रश्न है आपका, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं, ठीक है। वंदना भक्ति के आचार्य कौन है? अक्रूर जी हैं, है ना। तो अक्रूर जी ने जो है मतलब दिन रात वंदना की, तो कारण क्या था उनको जो है, उन्होंने जो दिन रात वंदना की अक्रूर जी ने, इसका कारण क्या है? कारण कुछ ऐसी स्थितियां बन गई ना उनके लिए कि वो वंदना कर रहे थे, हैं? क्या स्थिति थी, कौन बताएगा? कंस के दबाव में वो जा रहे थे, और कंस की योजना थी कृष्ण बलदेव को मार डालने की, उसी योजना में वो भी जा रहे थे, लेकिन वो तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन कंस के दबाव में जा रहे हैं, तो वंदना कर रहे हैं, अंदर अंदर वंदना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां हमारी भी कई बार होती हैं, असत लोगों की संगति में हम लोग जो है ऐसे फंस जाते हैं, तो हमें जो है प्रार्थना करनी चाहिए। वंदना का मतलब प्रार्थना करना चाहिए, हैं? तो मुझे निकालो, असत संग से निकालो, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो वंदना का मतलब प्रार्थना, याचना, ये सब वंदना के अंदर आ जाती है, है ना। तो ये वंदना के विषय में हमने चर्चा की। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।